सलाम क्या बात हूँ कोई। सलाम वालेकुम आपके साथ।
ठीक है, खैरियत से है। सीरत सहाबा रज़ी अल्लाह तआला की क्लास शुरू कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिहि लजीन अस्तफा, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन ज़ालिक लिमन खशिया रब्बा سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وقنا عذاب النار. سيرة الصحابة كي كلاس جو كي آج كي چوتھی كلاس जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे। खान साहब तो आजकल खूब दबा के नोट्स लिख भी रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। ठीक है, जोर से बोल दो। आगे बढ़ने का आखिरी बात जो पिछली क्लास में हो रही थी वो ये थी कि आप लोग सारे के सारे माशाल्लाह, कोई घर में पप्पू है तो कोई घर में गुड्डू है तो कोई घर में चुन्नू है तो कोई मुन्नू है तो ये सब जो है ना बहुत ही माशाल्लाह अल्लाह ताला के एहसान की वजह से आप सब के सब बहुत अच्छी शेल्टर्ड लाइफ गुजार रहे हैं। शेल्टर्ड लाइफ, शेल्टर्ड का मतलब होता है माशाल्लाह जेरे साया, ठीक है, अंडर कवर्स, ठीक है, बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा भी है और बहुत बचाया भी है, ठीक है। तो अब इट इज टाइम टू पे बैक का लफ्ज मैंने जो इस्तेमाल किया था ना वो अंग्रेजी के इस्तेमाल में जरा सा तो दूसरे मानी में दिया था, ठीक है। पे बैक का मतलब होता है बदला निकालना, तो वो क्लास में जल्दी में जो है ना वो ऐसी चीजें भी हो जाती हैं। तो गिव बैक का टर्म जो है ना वो ज्यादा इस कॉन्टेक्स्ट में वो ज्यादा मुनासिब था, ठीक है, कि भाई इट्स टाइम टू गिव बैक, कि जो आपको अपना इतना आपको मिला है ना अब उसको जो है वो अब आपको लौटाने की जरूरत है। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा क्योंकि मिसालों से बात समझाई थी। तो ये एक बच्चा होता है घर के अंदर, वो खाता पीता, माँ बाप उसको सब कुछ करते हैं, देते हैं वगैरह, हर चीज उसकी पूरी करते हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के बाद वो कहे कि नहीं, मैं तो घर का गुड्डू हूँ, पप्पू हूँ, चुन्नू हूँ, तो मैं चुन्नू ही रहूंगा, है, और मैं जो हूँ वो खाली माँ बाप का दिया हुआ खाता ही रहूंगा। तो फिर ऐसे लड़के को क्या कहा जाएगा कि भाई आप तो क्या हो गए, हड हराम हो गए हैं और रोटियां तोड़ रहे हैं। इट इज टाइम टू गिव बैक, ठीक है ना, अब तो आपको वापस करने का टाइम है। उसी तरीके से हमें भी जो है ना वो एक वापस करने का, खुसूसन जो बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह 16 एंड अबव कम से कम, तो उनके लिए तो ये वक्त है कि वो अब इसको संजीदगी से लेना शुरू करें। और फिर जो हमने बात किताब से पढ़ी थी वो भी यही थी, हजरत जी ने भी यही अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि अल्लाह ताला हमें अपनी जिंदगी के लम्हात को कीमती बनाने की तौफीक अता करे। सहाबा की जिंदगी के जो लम्हात थे तो उनको थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा टाइम दुनिया में मिलता था ना, वो उनका जो टाइम होता था वो इंतहाई कीमती होता था। कीमती का मतलब क्या होता है कि जिसकी बहुत बड़ी प्राइस लगती है, ठीक है, आप जो है वो गोल्ड मार्केट अगर जाते हैं, ठीक है, दीरा की गोल्ड मार्केट यहाँ पर है पीछे, तो वहां पे जाकर के आप जो है वो उनको कोई तांबे की बनी हुई, ब्रॉन्ज की बनी हुई कोई चीज बेचना चाहें, वो कहेंगे यार इसकी जो कीमत है ना ये समय तो मैं 100 रियाल से ज्यादा नहीं दे सकता इस कीमत। लेकिन अगर आप उसको गोल्ड का कोई जेवर बेचने के लिए जाते हैं तो वो बड़े माशाल्लाह जबरदस्त यहाँ पे प्राइस लगाते हैं, बिल्कुल सही सही प्राइस लगाते हैं। ये पाकिस्तानी गोल्ड है तो इसकी कम प्राइस लगेगी, ये सऊदी गोल्ड है तो इसकी इतनी ज्यादा प्राइस लगेगी, है ना, वो आपको 25,000 रियाल दे देंगे यार, ये तो बड़ी कीमती चीज है। तो सहाबा की जिंदगी के जो लम्हात होते थे वो कीमती कैसे होते थे, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में गुनाह नहीं करते थे, ठीक है, बिल्कुल वो गुनाह नहीं करते थे। तो अब सुबहान अल्लाह भी वो जो कहते थे ना, उस सुभान अल्लाह के ऊपर भी, एक दफा सुभान अल्लाह के ऊपर अल्लाह ताला इतनी बड़ी प्राइस लगा देते, इतना बड़ा सवाब तुम्हें मिलता है मतलब जन्नत के दिन, इतना बड़ा मुकाम मिलेगा, क्योंकि गुनाह नहीं होते। ठीक है, तो जिंदगी को कीमती बनाने का ये तरीका है जो हम सहाबा से सीखते हैं। तो हम हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में पढ़ रहे थे, तो उनका एक अगला वाकया हजरत ने बयान फरमाया कि सीरतुन्नबी में आपको याद होगा कि हमने गजवाए तबूक का वाकया पढ़ा था, तो उसके अंदर हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ क्या हुआ था, किसी को याद? काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गज़वाए तबूक, तो व्हाट डज दैट ब्रिंग टू माइंड? काब बिन मालिक उनका जवाब देने लगते हैं, आप लोग दे दो जी।
गजवाए
गज़वाए तबूक में तीन सहाबा निकलने में लेट हो गए, ठीक है, वो तीनों सहाबे जो थे वो ईमान वाले लोग थे, वो कोई मुनाफिकीन में से नहीं थे, मुनाफिकीन तो बहुत सारे नहीं गए थे, लेकिन सहाबा जो थे ना मोमिनीन, वो सिर्फ तीन थे जो कि नहीं गए थे, जाना चाहते थे लेकिन बस डिले हो गया, पुराना कोई एक्सक्यूज आ गया। उनमें से एक काब बिन मालिक रज़ी थे, तो नबी अलैहिस्सलाम जब वापस तशरीफ लाए थे तो आप ने फिर इनका बायकॉट कर दिया था, 50 डेज का बायकॉट कर दिया था जी।
नाम
बाकी दो का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, किसी को याद है बाकी दो का नाम? हमारे घर के पास एक सड़क है एक बंदे से एक के नाम के ऊपर, जब मैं गुजरता हूँ ना तो मुझे वो वाकया याद आ जाता है। तो खैर, तो इनका जो बायकॉट कर दिया था 50 दिन के लिए, तो 50 दिन के बाद जो है ना वो कुरान मजीद की आयात नाजिल हुई थी जिनके अंदर अल्लाह ताला ने इनकी तौबा की कबूलियत का ऐलान किया था। तो उसके बाद फिर इनको बुलाया गया था मस्जिद नबी के अंदर, ये मस्जिद नबी में तशरीफ लाए, तो हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं मस्जिद नबी में तशरीफ मैं अंदर आया ना, तो सारे सहाबा बहुत खुश थे कि भाई हमारे साथियों की तौबा कबूल हो गई। ठीक है, क्योंकि उन लोगों के ऊपर एक बहुत मुश्किल वक्त आया हुआ था, और ये सहाबा इतने करीबी दोस्त होते थे कि अपने दोस्तों के ऊपर मुश्किल वक्त की वजह से इनको खुद तकलीफ होनी शुरू हो, खुद मुश्किल शुरू हो जाती। ठीक है, तो जब उनकी मुश्किल खत्म हुई इन तीन सहाबा की, तो सारे सहाबी खुश हो गए, सब ने इनको जो है ना वो बहुत ही मुस्कुरा करके और अच्छे से जो है वो वेलकम किया। लेकिन फरमाते हैं कि तलहा ने जब मुझे देखा ना, तो बड़े पुरतफाक तरीके से वो आगे बढ़े, उन्होंने मुझे गले लगाया और मुझे मुबारकबाद दी, यानी एक्स्ट्रा गर्म जोशी के साथ तलहा रतान उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। तो मुझे वो बात हमेशा याद रहती है कि तलहा स्टूड आउट, ठीक है ना, ही स्टूड आउट इन दिस, इन वेलकमिंग मी, इन कॉन्ग्रेचुलेटिंग। ठीक है, तो तलहा रज़वान के अंदर ये बहुत जबरदस्त किस्म की खूबियां थी, और भी बहुत सारी खूबियां फिर शिक्षा के अंदर आपको बता ही चुके हैं। अब जो है ना इनके आगे यानी आखिरी जो इनकी खूबी, वो एक बड़ी यूनिक किस्म की खूबी है, बल्कि उससे पहले एक और छोटी सी बात आपको बता दें कि गजवे उहद में हजरत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इतनी कुर्बानी दी थी ना नबी अलैहिस्सलाम को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, इतनी जान निसारी उन्होंने दिखाई थी कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल उनसे बहुत खुश हुआ। तो जब गजवे उहद से नबी अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला जो कि शायर रसूल, ठीक है, शायर रसूल के नाम से लकब से मशहूर है, उनको फरमाया था कि हसन तुम तलहा की तारीफ में अशार लिखो। ठीक है, तो चुनाचे उन्होंने अशार लिखे और नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में मिंबर के ऊपर बैठ करके लोगों को सुनाए तलहा रज़वान की शान में अशार, हजरत हसन बिन साबित। ठीक है, यानी कोई ऐसे ही है कि जैसे ऐसे तो खैर नहीं है, हजरत नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस होती थी और आज की मजलिस तो जाहिर है तो मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन जैसे हजरत जी का कोई वो हो है माशाल्लाह हमारे क्या नाम है मोहम्मद बिन नोमान साहब, ठीक है, तो उनको जो है वो हजरत जी बिठा दें कि जी आप जो है ना वो यहाँ पे मिंबर पे बैठ करके यहाँ पे नाथ पढ़े, लेकिन अगर हजरत जी फरमाए कि जी मोहम्मद बिन नोमान आप जो है ना वो फलाने की शान में नाथ पढ़े जा, फलाने की शान में आप शायरी करें यहाँ पे बैठ करके, ठीक है, तो फिर कितनी बड़ी बात है कि हजरत जी ने फरमाया कि आप जो है बैठ करके यहाँ पर इनके लिए अशार पढ़े, कितनी बड़ी बात होगी ना, ठीक है, हमारे लिए कितनी बड़ी बात होगी। यही मामला उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत तलहा जतान के साथ हसान बिन साबित शायर रसूल को फरमाया आप बैठ करके उनके शान में जो है वो अशार पढ़, मिंबर के ऊपर बैठ कर, ठीक है, कितना बड़ा मुकाम अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया था इस तरीके से। अच्छा, अब इस मकाम को हासिल करने के लिए जाहिर है उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी थी, बड़े अच्छे अखलाक सीखे थे। चलिए अब और पूछो।
क्या
शेर क्या था? नहीं लिखा हुआ यार मेरे पास, इंशाल्लाह कभी देखेंगे उसको। ठीक है, आसान में साहब दौरान का दीवान तो होगा ना, ये मतलब तब चकल पे उसके अंदर ये वाले शायद मौजूद होंगे, वहां से इंशाल्लाह निकालेंगे कभी। ठीक है, तो अब जाहिर है इतना बड़ा मुकाम जो है वो फ्री में तो नहीं मिल जाता ना। ठीक है, उसके लिए कुछ बनना पड़ता है, कुछ सीखना पड़ता है। तो एक तो हमने इनकी बहादुरी की मिसालें, बहादुरी की जो है वो शान पढ़ी ना, कि कैसे अपने आप को बिल्कुल नबी अलैहिस्सलाम के सामने रख दिया। फिर इनकी जो है वो सखावत की बातें हमने पढ़ी, कि इतना पैसा आता भी था लेकिन आगे लुटा देते थे, गैरों को, गरीबों को जो है वो दे दिया करते थे। ठीक है, अच्छा फिर इनकी जो है वो क्या क्या हमने पढ़ा इनके बारे में, बहादुरी। ठीक है, जो लिखने वाले हैं वो लिख भी नहीं अगर कीवर्ड्स को, तलहा की बहादुरी के बारे में, तलहा की फयाजी और सखावत, ठीक है, जेनरोसिटी के बारे में, ठीक है, और फिर हमने तलहा रतान के जो है वो दीन के बारे में, जो उनकी क्यूरियोसिटी थी, दिस अर्ज टू लर्न द दीन ऑफ अल्लाह सुब्हान तआला। ठीक है, जैसे पूछते थे कि भाई ये अब अगर हमारे सामने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग गुजर जाएं नमाज के दौरान तो क्या करें हम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुतरे का हुक्म फरमाया। ठीक है, तो इनके वास्ते से उम्मत को सुतरे का अहकाम मिले, इस तरह से आप चीज सामने रख दिया करें तो इस तरह से आपकी नमाज को कोई मसला नहीं होगा। और उमर रतान से इन्होंने पूछा कि वो एक नबी अलैहिस्सलाम ने एक दफा फरमाया था कि एक कलमा है जिस कलमे के पढ़ने से जो है ना वो जन्नत वाजिब हो जाती है, तो वो कौन सा कलमा था, वो हम उस दिन पूछना भूल गए, तो आपको पता है वो वाला कलमा? तो क्या था इनके अंदर, इल्म की तलब। ठीक है, और इसके अलावा हमने उनके खुश अखलाकी के और भी वाकयात पढ़े दूसरों के साथ। लेकिन अब एक जो है ना वो इनके बारे में, कि इनके अपने घर के अंदर मामला कैसे, ठीक है, उसका वाकया हमारे हजरत ने लिखा। अगरचे कि ये बज़ाहिर लगता है कि ये अंकल्स के लिए होगा, बड़े लोगों के लिए होगा, लेकिन आप जो यहाँ पे मौजूद हैं सारे के सारे क्या हैं, छोटे लोग, ठीक है, लड़के, जिन्होंने इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी उम्रों के अंदर बरकत दे कि आप जो है वो एक ना एक दिन बड़े होंगे। ठीक है, तो बच्चे तो नहीं रहेंगे ना, तो बड़े होंगे, तो जब बड़े होंगे तो फिर ये बातें आपको भी बहुत ज्यादा काम आएंगी। तो हजरत जी ने फिर तलहा के बारे में एक और वाकया लिखा, वाकया से थोड़ा सा एक नरेशन लिखी कि हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु की खूबी थी कि वो एक कामिल और बेहतरीन हस्बैंड भी, ठीक है, बेहतरीन शौहर भी। तो उनकी घरेलू जिंदगी जो है ना वो निहायत काबिले तकलीद है ना, इट्स वर्थ फॉलोइंग उनकी घरेलू जिंदगी। एक सहाबिया थी जिनका नाम था उम्मे अबान रजी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सिफात अता फरमाई, उनकी शक्ल भी अच्छी थी, अकल भी बड़ी जबरदस्त थी, कामिल अकल लिखी है। बहुत सारे सहाबा ने उनके पास निकाह का पैगाम भेजा मगर उन्हें कोई रिश्ता पसंद नहीं आता। ठीक है, वो बड़ी सिफात वाली थी, अब जाहिर है कोई सिफात वाला होता है तो वो तो एक क्लोज मुआशरा होता है ना, एक बहुत ही छोटा सा मदीना मुनव्वरा का। ठीक है, जैसे हम मिलने जुलने वाले लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब एक दूसरे को फैमिली लेवल के ऊपर जानते हैं, मजलिस में जो है वो आपकी अम्मियाँ भी आती हैं, बहनें भी आती हैं, और सब एक दूसरे को अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं, समझ लें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है कि हम उस तरह के एक मुआशरे में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रहते हैं जिसमें एवरी वन नोज एवरी वन एल्स। ठीक है, ये मदीना तैयबा वाला मुआशरा, तो मामूली बात नहीं है, मदीना तैयबा वाला मुआशरा। ठीक है, अल्लाह ताला हमें उन जैसे बनने की भी तौफीक अता फरमाए, मॉडल तो अता फरमा दिया लेकिन मॉडल के जो पार्ट्स हैं जो कि हम लोग हैं, ठीक है ना, हम पार्ट्स जो हैं वो भी तो अच्छे बन जाए ना तो फिर बात पूरी हो जाएगी। तो अच्छा ये अबान, तो इनके बारे में खबर फैल गई थी भाई कि भाई ये बहुत खूबसूरत भी हैं और बहुत अच्छी सिफात वाली भी है, ठीक है, अकल वाली भी बहुत अच्छी है। तो उनके पास रिश्ते आते थे लेकिन वो किसी का रिश्ता कबूल नहीं करती थी। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके पास रिश्ता भेजा ना, तो उन्होंने फौरन कबूल कर लिया। ठीक है, तो करीब के जो उनके लोग थे, जहर खानदान की औरतें वगैरह होती हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा कि पहले इतने रिश्ते हैं आपके लेकिन आपने कोई रिश्ता कबूल ना किया, तो आपने तलहा का रिश्ता क्यों कबूल कर लिया? ठीक है, शादी के लिए तथागत रिश्ता कबूल कर दिया। तो वो कहने लगी कि मैं दरअसल उनके करीबी रिश्तेदारी औरत, रिश्तेदार ठीक है, जैसे कजन होते हैं या फर्स्ट कजन या सेकंड कजन या इस तरह के जान पहचान वाले लोग होते हैं। तो मैं ना इस करीबी रिश्तेदारी की वजह से उनके अखलाक से वाकिफ हूँ। ठीक है, आपको पता है कई दफा हम इसको बार बार होके मेंशन करते हैं कि पर्दे के अहकाम तो 5 हिजरी में आए थे। ठीक है, 5 हिजरी के बाद तो फिर सेपरेशन हो गई मर्दों और औरतों में। अब तो एज अ थर्ड पर्सन जो है वो किसी औरत के बारे में अगर किसी ने किसी मर्द को बताया तभी उसको पता चलेगा, लेकिन इंटरेक्शन तो खत्म बंद। ठीक है, अनलेस के कोई ऐसी मजबूरी वाली सिचुएशन उसमें इंटरेक्ट करना पड़े मर्दों औरतों का आपस में, वरना तो कोई इंटरेक्शन नहीं, लेकिन उससे पहले तो ऐसा नहीं। ठीक है, 5 हिजरी से पहले पर्दे के अहकाम आए ही नहीं थे, तो लोग एक दूसरे को जानते थे, मर्द औरतों को उनकी शक्ल से भी जानते थे। ठीक है, जैसे कि वो कौन सा वाकया था जिसमें शक्ल का किसी को याद, उम्मातुल मोमिनीन में से किसी की चेहरे का वाकया आप चले बताए। हाँ, कौन से साहबी थे, साहबी का नाम क्या था, सफवान है ना, सफवान नजर आता था। तो सफवान रतान जो है वो पीछे से अपना ऊंट लेकर के आ रहे थे, लश्कर नबी अलैहिस्सलाम का आगे जा चुका था और आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो पीछे रह गई थी। ठीक है, तो वो बड़ी अकलमंद थी, बजाय इसके के भागना दौड़ना शुरू करती इधर से उधर वहां चली जाती टेंशन में आकर के, उन्होंने अकलमंदी का मुजाहरा किया, वो वहीं बैठ गई और वहीं पे बैठ करके उनको थकन हुई, लेट गई, उसके बाद सो गई। ठीक है, तो अब पीछे से जो है वो सफ़वान रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो आ रहे थे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने उनको ये ड्यूटी दी थी कि जब फौज का लश्कर आगे चला जाए तो अक्सर कुछ चीजें पीछे छूट जाती हैं, कुछ गिर जाती हैं, तो तुम पीछे से जो है ना वो चेक करते हुए आओ कि कोई ऐसी चीज अगर गिरी पिड़ी हो पड़ी हो तो तुम उसको उठा करके लश्कर तक पहुंचा दो। ठीक है, तो वो इस नीयत से पीछे आ रहे थे, उन्होंने क्या देखा कि आयशा के एक खातून जो है वो लेटी सो रही है। तो उन्होंने जो आवाज दी ना, आयशा सिद्दीका एकदम से जो उठी ना तो उनका चेहरा खुला हुआ था। ठीक है, हालांकि पर्दे के अहकाम आ चुके थे लेकिन सो रही थी, सोते हुए जो उठी ना तो उनका चेहरा खुला हुआ था। सफवान रतान ने उनको देखा, पहचान गए कि ये आयशा रजी अल्लाह तआला, क्योंकि पर्दे के अहकाम से पहले फरमाते हैं मैं उनको देख चुका था। ठीक है, लेकिन जैसे ही देखा वैसे ही अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और आयशा सिद्दीक अल्लाह तआला ने फौरन अपने आप को कवर कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने ऊंट को बिठा दिया, खुद साइड पे हो गए, आयशा सिद्दीक अल्लाह तआला ऊंट पे बैठ गई और फिर वो उनको लेकर के लश्कर में आ गए और फिर जो है वो सारा का सारा वो वाकया इफ्क का तमाशा हुआ। ठीक है, तो ये तमाशे भी होते हैं जब आप इस तरह की क्लोज नेट फैमिली स्ट्रक्चर में रहते हैं ना, तो ये तमाशे भी होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में तमाशा कितना बड़ा होगा, वाकई इफ का तमाशा। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से कि तमाशे होंगे, इस किस्म का फतना फितना होगा, तो नहीं जी, बस बेटर डोंट नो एनीवन, दूर दूर रहना चाहिए और किसी से ताल्लुक नहीं बनाना चाहिए, किसी से मिलना जुलना नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने तो सुन्नत को फॉलो करना है, बाकी अल्लाह की मर्जी। ठीक है, अल्लाह के हवाले करना है हमें। तो हर चीज के अंदर हमारे लिए इसबाक है, हर चीज के लिए गाइडिंग लेसन होते हैं अलहमदुलिल्लाह। तो इस वजह से ये तलहा जान को जानती भी थी और उनके अखलाक से भी वाकिफ थी। तो उन्होंने पूछा लोगों ने कि भाई क्या वजह थी कि आपने इनका रिश्ता कबूल कर लिया। कहने लगी कि मैं उनके अखलाक से वाकिफ थी, चुनाचे उनके अखलाक की वजह से मैंने उनके रिश्ते को कबूल किया। तो लोगों ने पूछा कि कौन से अखलाक,
अबान
उम्मे अबान। तो उन खातून ने हजरत तल्हा रतान की 6 खूबियां गिनवाई और कहा कि जिस खाविंद में ये खूबियां हो वो दुनिया का बेहतरीन खाविंद हुआ करता है। पहली और दूसरी खूबी, यानी दोनों का हजरत ने एक ही पैराग्राफ में जमा किया है। तो फरमाते हैं कि पहली और दूसरी खूबी ये है कि जब वो घर में दाखिल होते हैं तो मुस्कुराते हुए दाखिल होते हैं, है ना। हजरत जी की जितने आप बयान उठा के देख लें, हर बयान में यही बात फरमाते हैं, घर में आए तो मुस्कुराते हुए आए, दफ्तर की जितनी भी टेंशन है ना उसको दफ्तर में छोड़ करके आए। ठीक है ना, घर में उस टेंशन के साथ नहीं है, तो मुस्कुराते हुए आते हैं और जब घर से बाहर जाते हैं तो भी मुस्कुराते हुए जाते हैं। लिहाजा खाविंद के अंदर इन 2 खूबियों का होना बहुत जरूरी है। बाहर से आए तो मुस्कुराता हुआ आए, अहले खाना को सलाम करे, और जब घर से जाना हो तो मुस्कुराता हुआ जाए और अलविदा कहते हुए जाए। ठीक है, जाते हुए भी सलाम करते हुए जाना, या अल्लाह हाफिज कहते हुए जाना, ठीक है, फी अमारे दा ये कहते हुए जाना, और आते हुए भी जो है वो सलाम कर सके, आना मुस्कुराते जाना। ये तो दो खूबियां तलहा जान की उन्होंने गिनवाई, ठीक है। तीसरी खूबी उन्होंने ये बयान फरमाई, अच्छा ये सिर्फ खाविंद के लिए नहीं है, ठीक है ना, ये यही है कि भाई अंदर आए तो भाई जो है वो गुस्से में बोलता हुआ अंदर आए और सलाम ना करे, ठीक है, नहीं, घर में तो दाखिल होने के ये सबके लिए आता, ठीक है। तो तीसरी खूबी ये है कि जब उनसे मांगो तो देने में बुखल नहीं कर, कंजूसी नहीं कर। बीवी की भी कुछ जरूरियात होती हैं, लिहाजा जब बीवी अपने खाविंद से कुछ पैसे मांगे उसे कंजूसी नहीं करनी चाहिए, बल्कि जितना अल्लाह ने उसे दिया है उसमें से खुले दिल से खर्च करना चाहिए। ऐसा करने से अल्लाह ताला उसके रिस्क में बरकत अता फरमा देते हैं, ठीक है, यानी बीवी पर खर्च करना, इससे भी अल्लाह ताला जो है वो बरकत अता फरमाते हैं। जो और जरूरियात होती हैं बेटे के ऊपर, माँ बाप की भी जरूरियात होती हैं, जिम्मेदारी होती है, ठीक है, तो उसको माँ बाप पे भी खर्च करना है, लेकिन सिर्फ माँ बाप पे खर्च नहीं करना है बल्कि बीवी और बच्चों के ऊपर भी खर्च करना है, ठीक है। अब वो अपने पास जो माल है उसको फिर इस तरीके से डिवाइड करे कि सबको जो है वो उनकी जरूरियात के हिसाब से दे सके। जी अब्दुल,
ठीक है, तो बात है तो
हाँ, अम्मी अब्बू को भी देना है और बीवी बच्चों को भी देना है, ठीक है। तो देखते हैं कि जो लोग गिन गिन के देते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला भी उनको गिन गिन के देते हैं। इसलिए फरमाया है कि तुम दूसरों पर आसानी करो, अल्लाह ताला तुम पर आसानी कर। गिन गिन के देने का क्या मतलब है, ठीक है, गिन गिन के देने का मतलब कंजूसी के साथ देना, यानी ओहो बहुत बहुत ज्यादा हो गया, दिस इज टू मच, तो अब कम कर दिया कम कर दिया, ऐसे नहीं, बल्कि जितना अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो जरा दिल खोल करके देना, ठीक है, दिल बड़ा करके देना। तो बीवी बच्चों के साथ ही इसी तरीके से दिल बड़ा करके, नाजायज काम के लिए तो आप अपनी अम्मी को पैसे नहीं दे सकते, नाजायज काम के, ठीक है ना, नाजायज काम करने के लिए अम्मी आपसे कहें मुझे जो है वो ये काम करना है, फिल्म जाके देखनी है, किसी की अम्मी किसी को कहें, तो आप अपनी अम्मी को पैसे नहीं दे सकते फिल्म जा करके देखें जाकर, ठीक है ना। तो जब अम्मी को नाजायज काम के लिए पैसे नहीं दे सकते तो क्या ख्याल है, आपको दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, नहीं, बच्चों को भी नहीं दे सकते, ठीक है ना, और बच्चों को भी नहीं दे सकते, बीवी को भी नहीं दे सकते, नाजायज काम, ठीक है ना, लेकिन जायज काम के लिए तो सबको देना है ना। तो ये कह रहे कि अगर वो आपसे बता करके मांग रही है तो फिर तो आपको पता चलेगा ना कि वो इस किस काम के लिए मांग रहा है, ठीक है। अगर वो बिल्कुल नहीं बता रही तो इतना ज्यादा खोज लगाने की जरूरत नहीं है, बस उसमें ध्यान रखें कि हाँ भाई ठीक है वो मांग रही है तो किसी काम की नहीं मांग रही होगी। अच्छा, तो घर वालों पे खास है, बल्कि एक हदीस मुबारका का तो मजमून है कि सबसे बेहतरीन सदका वो होता है जो कि अपने घर वालों के ऊपर खर्च किया जाए, ठीक है, तो इवन गरीबों पे खर्च करने से ज्यादा सवाब जो है वो अपने घर वालों के ऊपर खर्च करने पर होता है। अच्छा, चौथी खूबी बयान फरमाई कि चौथी खूबी ये है कि अगर, यानी उम्मे अबान ने तलहा जताना की चौथी खूबी बयान फरमाई कि अगर उनसे नहीं मांगो ना तो भी वो दे देते हैं, यानी बिन मांगे के भी दे देते, ठीक है, देर नहीं करते। तो फरमाते हैं ये भी अजीब खूबी है, ये अब बाकी हजरत जी के अपने अल्फाज होते हैं कि ये भी अजीब खूबी है कि अगर बीवी खुद नहीं मांग रही है तो खाविंद को चाहिए कि वो अंदाजा लगाए कि बीवी की जरूरियात क्या है, या घर में किसी चीज की जरूरत है या नहीं है, तो वो अज खुद बिन मांगे बीवी को पैसे दे दिया चले, ठीक है। जरूरी तो नहीं है ना कि अब आप आपसे मांगेंगी तभी आप देंगे, आपको खुद भी तो अंदाजा होना चाहिए ना कि मेरी बीवी की क्या जरूरियात हैं, तो उनको हो सकता है इसकी जरूरत पड़े उसकी जरूरत पड़े, ठीक है, तो पहले से भी जो है वो पैसे दे देना चाहिए। इसको हमारे नजर क्या लफ्ज कहते हैं, जेब खर्च, ठीक है, पॉकेट मनी देना, सही है। तो पॉकेट मनी वो नहीं होती कि जब बीवी ने मांगा तो आप उसको पॉकेट मनी दे रहे, पॉकेट मनी होती है जो कि आपने बगैर मांगे एक तय किया हुआ हो कि जी महीने में जो है ना मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा। अब डिपेंड करता है आपकी कितनी वसत है, अगर आप बहुत माशाल्लाह कमाने वाले हैं तो आप 2,000 रियाल दे दिया करें, ठीक है, अगर उससे कम है तो आप 1,000 रियाल दे दें, उससे कम है तो आप 500 रियाल दे दें, उससे कम है तो आप 200 रियाल दे दें, ठीक है ना, 200 रियाल 100 रियाल कुछ भी हो अपने वसत के हिसाब से, और ये बंदे को खुद ही पता होता है कि उसकी कितनी वसत है, उसकी कितनी जो है वो कैपेसिटी है, उस हिसाब से जो है वो पॉकेट मनी तय कर देनी चाहिए। ये हजरत जी की तरफ से बड़ा, और खाली हजरत जी की जरूरत, बल्कि इवन पहले भी हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि जैसे बुजुर्ग भी इस चीज को कहा करते थे कि पॉकेट मनी बीवी को दिया करें। अच्छा, पांचवी खूबी ये बताई कि कोई उनका काम कर दे तो वो शुक्रिया अदा करे, ठीक है ना, वो शुक्रिया अदा करे अल्लाह ताला। मसलन पहनने के लिए कपड़े धोकर दिए तो वो शुक्रिया अदा करते हैं, दस्तरखान पर उनके सामने खाना रखा तो वो शुक्रिया अदा करते हैं, ठीक है ना, थैंक यू, जजाक अल्लाह, ठीक है। तो इस तरह के अल्फाज का अदा करना जो है ना, ये बहुत अच्छे अखलाक होते हैं और इसका बड़ा असर पड़ता है घर के अंदर। तो बहुत सारे खाविंद अब यजी फरमाते हैं, बहुत सारे खाविंद आज ऐसे हैं कि जिनके अंदर ये सिफत मौजूद नहीं होती। बीवी जितनी मर्जी खिदमत करे, जितनी मर्जी कुर्बानी दे, वो तो कभी बीवी की कोशिशों पर उसका शुक्रिया अदा नहीं करते, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये सिर्फ खाविंदों का मसला नहीं है, ये ओवरऑल पूरे माशरे का मसला है, और जी ने इसके ऊपर बड़ी बात करी है, ठीक है ना, कि एज पाकिस्तानीज एंड एज इंडियन वी डोंट नो व्हाट हाउ टू थैंक, शुक्रिया अदा करना हमें नहीं है, ठीक है। एक अमेरिकन स्कॉलर है, उनको हम पहले बहुत सुना करते रहे, तो आपके सामने भी खैर तुमसे इसके होता है, तो वो एक दफ़ा अपना वाक्य बयान करने लगे कि मैं यूके गया, तो यूके में ना मैं एक टैक्सी में बैठा, तो टैक्सी से जब मैं उतर रहा था तो मैंने उसको कहा थैंक यू, तो टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि यू नो मेरी टैक्सी के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो मिट, अच्छा वो अमेरिकन लेकिन वो अपनी बातें पूरी अरबी में कर रहे हैं और अपना, तो वो समझा कि ये कोई मिडिल ईस्टर्न ही है। उन्होंने जो थैंक यू कहा ना, तो कहने लगा टैक्सी ड्राइवर कि मेरी टैक्सी में बहुत सारे लोग जो है ना वो ईस्ट से आते हैं, मिडिल ईस्ट से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, इंडिया से आते हैं, वो बैठते हैं हॉलीडे सीजन के अंदर, बड़े लोग आते हैं, लेकिन आज तक मुझे किसी ने उनमें से जो है ना थैंक यू नहीं कहा, यू आर द फर्स्ट पर्सन हु इज सेइंग थैंक यू टू मी, तुम पहले बंदे हो जो मुझे थैंक यू कह रहा, ठीक है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि हमने शुक्रिया अदा करना सीखा ही नहीं होता। जी फरमाते हैं कि मैं एक दफा जहाज में सफर कर रहा था, तो मेरे बराबर में एक अमेरिकन लड़की आके बैठ गई, और उसके बराबर में उसकी कोई छोटी सी 6 साल की बच्ची थी, तो जी जो है वो इस सीट पे बैठे हैं जैसे आइल सीट होती है, और वो औरत जो है वो विंडो सीट पे बैठी हुई है, दरमियान में उनकी छोटी सी बच्ची बैठी हुई, तो जो माँ थी वो अपने बच्चे को खाना खिला रही थी, तो वो उसके मुंह में ना एक स्पून डालती थी खाने का, बच्ची खाती थी, फिर माँ उसको कहती थी से थैंक यू, तो बच्ची कहती थी थैंक यू मॉम, फिर वो दूसरा खाना चमचा डालती थी, कहती थी से थैंक यू, वो बच्ची कहती थी थैंक यू मॉम। हजरत फरमाते हैं कि मैंने काउंट किया, कोई उसने 25 मरतबा जो है ना वो से थैंक यू कहा, और इस बच्ची ने थैंक यू मॉम। इस तरीके से सिखाया जाता, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो सारी चीजें नहीं होती, तो इस वजह से हम थैंक यू करते नहीं, ठीक है। तो हमें सीखना है, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला माफ फरमाए, गलती हो गई, लेकिन गलती हो जाने का मतलब ये को थोड़ी है कि अब इसको कंटिन्यू करें, तो अब ये आगे भी हम इसको कंटिन्यू करना है, नहीं, अब हमने उसको ठीक करना है, ठीक है। तो शुक्रिया अदा करने की कोशिश करनी है हर छोटी बड़ी चीज के ऊपर, पानी का गिलास भी पिला रहे हैं ना, शुक्रिया, जजाक अल्लाह, बेहतरीन शुक्रिया तो जजाक अल्लाह होता है कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जजा अता फरमाए, इससे अच्छा शुक्रिया क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, एक और बात बहुत अहम, ये घरों के अंदर अब आप लोग जो है ना वो बहुत सारे लोग जो है वो माशाल्लाह भाई भी हैं, ठीक है, और भाइयों के साथ भाई भी हैं का मतलब क्या होता है कि घर में बहनें भी हैं आप, ठीक है, तो बहनों के साथ जो है ना वो आप भाइयों हजरात को बहुत ज्यादा अच्छे से रहने की जरूरत, ठीक है। काबिंदों के तो वो तो आप कहेंगे ना तो अंकल का मसला है, हमारा मसला भी थोड़ी है, ठीक है, लेकिन नहीं, कल को आप खाविंद बनेंगे और आज आप क्या हैं, भाई, ठीक है। तो भाई जब बहनों के साथ गलत तरीके से बर्ताव करते हैं ना, जैसे उनको शुक्रिया अदा नहीं करते, ठीक है, या खुद जो है वो उनका हाथ नहीं बटाते, बल्कि ऐसे जो है ना वो खाना खत्म हुआ इधर से भागे, अब बहन आएगी वही जो है वो दस्तरखान को समेटेगी, वही जो है वो चीजें उठाएगी, वही जो है वो प्लेट उठाएगी, तो आपको अंदाजा नहीं है, अभी तो आप वैसे भी छोटे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़ों को भी अंदाजा नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। आप इतना बुरा काम कर रहे हैं, इतना बुरा काम कर रहे हैं जिसका कि आपको गुमान ही नहीं हो सकता कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक लफ्ज में अगर आप जवाब देना चाहें इसका, क्या कर रहे हैं आप, एक लफ्ज में चलने जुलम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा गुण गलत काम कर रहे हैं। वो क्या, तकबर कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। एक ऐसा काम जो कि बड़ा लॉन्ग लास्टिंग है, जिसके बड़े दूर रस नतीजे निकलते हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं।
नहीं।
और
नहीं। नहीं।
ये
नहीं।
स्टूडेंट से एक जवाब तो आ गया है वैसे, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, गुलामी,
सर्वेंट समझ, उनको
उनको गुलाम समझ रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, तकब्बुर कर रहे हैं, उनको गुलाम समझ रहे हैं, और जो है वो नाशुक्री कर रहे हैं, और जदाकल्ला नहीं कह रहे हैं, और भी बताए, काम चोरी कर रहे हैं। आप पता है क्या कर रहे हैं, आप जो है वो शैतान को मौका दे रहे हैं, आप शैतान के रास्ते को खोल रहे हैं कि वो आपकी बहन को वरगलाए, वो आपके बहन के दिल के अंदर जो है ना वो आपके खिलाफ नफरत पैदा करे, बल्कि मर्दों के खिलाफ नफरत पैदा करे, बल्कि और तीसरी चीज किसके खिलाफ नफरत पैदा करे,
होने वाले
घर के खिलाफ नफरत पैदा करे, घर के खिलाफ नफरत पैदा। जब घर के मर्द अपने औरतों के साथ ऐसा सलूक करते हैं ना, तो शैतान का दरवाजा खुल जाता है, और वो फिर आकर के घर की औरतों को घर के खिलाफ कर, और घर के खिलाफ करने का मतलब आपको पता है क्या है, घर क्या है औरतों के लिए, घर औरतों के लिए क्या है, हिजाब है, पर्दा है, प्रोटेक्शन है। घर क्या है, घर औरतों का हिजाब है, घर औरतों की पनाहगाह है, घर औरतों की प्रोटेक्शन है। और एक और लफ्ज बताएं घर औरतों की क्या है, जिससे कि फिर बात सही समझ में आए, आखिरी जवाब लफ्ज,
इज्जत
और कोई पर्दा तो हिजाब के ट्रांसलेशन हो गए ना। घर औरतों को पता है क्या है, घर औरतों का लिबास, लिबास गारमेंट, पता है आपको, घर औरतों का लिबास है। तो जब उनके दिल में इस लिबास की नफरत पैदा होगी, जो कि आपकी हरकत की वजह से हुई, किसकी हरकत की वजह से, ये उनके अपने सगे भाई की हरकत की वजह से या उनके बाप की हरकत की वजह से हुई, उनको ये लिबास बुरा लगना शुरू हो जाएगा। और जब कोई चीज बुरी लगती है तो फिर क्या करता है इंसान, उससे दूर भागता है, उससे बाहर निकलता है। घर सबसे पहला लिबास है औरत, वो अपने लिबास में से बाहर निकलेगी, और फिर दूसरा लिबास कौन सा होता है औरत, घर के बाहर बुरका, ठीक है ना, फिर वो बुरके में से बाहर निकले, और फिर तीसरा लिबास क्या होता है औरत का, सलवार कुर्ता भाई, लेकिन आम अलवाज अल्फाज में आपको बोले सलवार कुर्ता, क्योंकि अबाया के अंदर क्या होता है, सलवार कुर्ता, ठीक है ना, या पैंट शर्ट जो भी है। बिल आखिर जा करके वो औरत अपने सलवार कुर्ते में से भी बाहर निकली। वेस्ट में क्या हो रहा है देखते नहीं है आपको, क्या नजर नहीं है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सड़कों पर नजर नहीं आता, बगैर लिबास की जो है वो औरतें घूम रही है, यहां पर भी घूम रही है, क्यों घूम रही, सारा इल्जाम शैतान को नहीं दे सकते, हम खुद शैतान वाला काम कर रहे होते हैं, हम खुद शैतान को जो है मौका दे रहे होते हैं, उसके दिल में नफरत पैदा कर रहे होते हैं, घर के बारे में नफरत पैदा कर रहे हो, लिबास के बारे में नफरत पैदा कर रहे हो। जब शैतान का दरवाजा खुल गया वो उसको घर में से बाहर निकालेगा, घर से जब बाहर निकल गई थोड़े दिन के बाद बुरके में से बाहर निकाल देगा। यहाँ पे क्या आप देखते नहीं है, पहले घर से बाहर निकली बुरका पहन करके और अब बुरके से भी बाहर निकल गई। और बहुत सारी ऐसी हैं जो कि बुरके के बाद जो है वो जो बाकी लिबास था उससे भी बाहर निकल गई, नजर नहीं आता, आंखें नहीं इस्तेमाल करते। वेयर डिड इट ऑल स्टार्ट, मर्दों से ये शुरू हुआ था काम। फेमिनिज्म कह करके जो ना अपने ऊपर से इल्जाम दूसरों के सर डाल दिया, ये तो औरतों का कसूर है सारा का सारा, वो बात नहीं मानती जी, नहीं मर्दों का कसूर है। कुरान अजीम शान फरमाता है अल रिजालु कवामून अला निसा, अल रिजालु कवामून अला निसा। जब मर्द इस किस्म की हरकतें करते हैं ना तो फिर नीचे वाली औरतें जो हैं वो ऐसी हरकतें करते हैं, इसके बगैर नहीं कर सकते, मजाल नहीं हो सकती को इसके बगैर कर सके। ठीक है, तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन योर ओन शोल्डर्स, बी वेरी वेरी केयरफुल विद देम। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तो कांच की बनी हुई गुड़ियां हैं। ठीक है, कांच की बनी हुई चीज का मतलब क्या होता है, कभी देखा है कांच की बनी हुई चीज जो होती है ना वो आपको डिब्बे में आती है ना कार्टन के अंदर, तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ होता है, फ्रेजाइल, हैंडल विथ केयर, हैंडल विथ केयर, एहतियात से इसको हैंडल करो। औरत को नबी अलैहिस्सलाम ने कि वो तो अरबी का लफ्ज कितना प्यारा लफ्ज है वो, किसी को अगर याद हो काफ से होता है तो हजरत तलहा जान का ऐसा मामला नहीं था। ठीक है, तो अब जो है ना ये बहुत ज्यादा हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि भाई हम अपने औरतों की जो अच्छी बातें हैं जो हमें दीन से मिलती है ना उसके ऊपर उनको प्रेज किया करें, उसके ऊपर उनकी तारीफ किया करें। जब उनकी तारीफ करेंगे ना दीन के ऊपर नेकी के ऊपर तो उनके दिल में शौक पैदा होगा नेकी का, उनके पर्दे के ऊपर उनकी तारीफ करें, राइट, उनकी खिदमत के ऊपर उनकी तारीफ करें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम किस चीज की तारीफ करते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे अच्छी पढ़ाई वाले लोग हैं, अच्छी पढ़ाई वाले लोग क्या करते हैं, ग्रेड्स के ऊपर तारीफ करते हैं। ओह उसका ए प्लस आया है, उसके सारे ए प्लस आए हैं, तो जब आप तारीफ करेंगे किसी बच्ची की कि उसके सारे ए प्लस आए तो आपकी बच्ची भी कहेगी ना मेरी भी अगर सारे ए प्लस आएंगे ना तो मेरे अब्बू मेरी भी तारीफ करें, मेरे भाई मेरी भी तारीफ करें, तो चलो मैं भी ए प्लस के अंदर लग जाती हूँ। तो जब वो ए प्लस की मेहनत में लगेगी तो फिर दीन तो नहीं सीख सकेगी, घर की खिदमत करना तो नहीं सीख सकेगी ना भाई, घर की जिम्मेदारियां पूरा करना तो नहीं सीख सकेगी ना, तो वो तो अच्छी पढ़ाई के चक्कर में लग जाएगी। किसने लगाया उसको, उन लोगों ने लगाया जिन्होंने इस बात के ऊपर उसकी तारीफ करी। घर के अंदर एक औरत जो होती है हाउसवाइफ होती है, घर की जो है वो सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रही होती है, सारी सफाई सुथराई कर रही होती है, घर को मैनेज कर रही होती है, ठीक है ना, लेकिन उसकी तारीफ नहीं करते। किसकी तारीफ करते हैं, वो जो बाजार के अंदर जो है ना वो जॉब कर रही है, राइट, जो जो है वो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रही है, ठीक है ना, और कोई जो है वो जाकर के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर सीईओ बनी हुई बैठी हुई है उसकी तारीफ करते हैं, देखो शी इज अ वुमन ऑफ सब्सटेंस, वो है काम की औरत, राइट, वो जबरदस्त औरत है, क्या जबरदस्त डॉक्टरनी बन के बैठी हुई है, क्या जबरदस्त जो है वो मुआशरे के अंदर ये कर रही है वो कर रही है, और तुम घर में बैठी हो तुम क्या कर रही हो, बच्चे पाल रही हो, ऐसे बात करते हैं। ठीक है, अब तो वो औरत क्या सोचेगी और शैतान उसके दिल में क्या वसवसा डालेगा, वो अच्छी है ना जो बाहर निकली हुई है, राइट, वो अच्छी है ना जो कि जॉब कर रही है, जो कि दूसरों की खिदमत कर रही है ना, दफ्तर की खिदमत कर रही है, जॉब दुकान की खिदमत कर रही है, मैं घर में खिदमत करती हूँ मुझे तो ताने मिल रहे होते हैं, मुझे तो वो तारीफ ही कोई नहीं कर रहे होते हैं, मेरी तो हर बात के ऊपर वो एतराज कर रहे होते हैं, हर बात में कीड़ा निकाल रहे होते हैं, ये तुमने गलत नहीं किया, इसको ऐसे बनाते तो ज्यादा अच्छा था, इसको वैसे बनाते तो अच्छा था, तुमसे तो आज तक तो कोई अच्छा काम ही नहीं हुआ, है ना। ऐसे जब हम सुनाते हैं ना अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, तो फिर शैतान बदबख्त उसके लिए कितना आसान हो जाता है कि वो उनको बेपर्दा करके सारे मुआशरे की नजरों के सामने जो है वो नचाए। सारे मुआशरा उसको देखता है और उसको देख करके जो है ना वो गुनाहों का मुर्तकिब भी होता है और क्या क्या नहीं करता है। ठीक है ना, बात कहाँ से शुरू होती है? ऑलवेज रिमेंबर, वेयर डज इट ऑल स्टार्ट, वेयर डज इट ऑल स्टार्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम अस द मेन। खुवातीन भी सुन रही हैं, ठीक है ना, उनका एक अलग है, वो भी उसको अब्यूज ना करें कभी भी, ठीक है, लेकिन मर्दों का ये काम करने का है। अल्लाह ताला ने अर्रिजालु कवामून अला निसा इसलिए फरमाया, इसलिए नहीं कि ढोंस धमकी और डंडा चलाने के लिए खाली, ठीक है, और ज्ञान के लिए फरमाया। तो तरफा ताला की खूबियों में से एक जबरदस्त खूबी हजरत जी ने फिर यहाँ पे जो बयान फरमाई वो यही थी। ठीक है, इसके बाद खुदा हम क्लास खत्म भी कर लेते हैं, लेकिन और कुछ, हाँ, छठी और आखिरी खूबी बस ये पढ़ के, आखिरी खूबी ये गिनवाई कि अगर बीवी से कोई गलती हो जाए ना तो वो जल्दी माफ कर देते हैं। इसके बरक्स आज हमारे माशरे में कई लोग अपनी बीवियों को जलील करते हैं, जिच करते हैं, दूसरों के सामने रुसवा करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आज तो मामला इतना खराब हो गया है कि इस वक्त तो घरानों के अंदर शौहर बीवियों का मजाक उड़ाने से बात आगे बढ़ गई। अब कहाँ पे बात पहुंच गई है, अगर आप बता देंगे तो क्लास खत्म। अब कहाँ पे बात पहुंच गई है भाई, नहीं, अब तो बीवियां शोहर का मजाक उड़ा रही हैं। इन गुनाहगार आंखों ने, उन गुनाहगार कानों ने कितना ये इस तरह के वाकयात सुने, ऐसा जलील करती हैं शोहर को उनके बच्चों के सामने और उनके दूसरे रिश्तेदारों के सामने के अल्लाह मान वल्लाह। लेकिन डोंट फॉरगेट, ऐसे ही नहीं हो गया ये मामला कि बीवियां अब शौहरों को दलील कर रही हैं, ये शुरू उधर ही से हुआ, ये शुरू मर्दों की हरकतों से हुआ। ठीक है ना, अल्लाह ताला हमारी तौबा को कबूल फरमा दे, बल्कि तौबा की तौफीक अता फरमा दे, ठीक है, ताकि हमें जिल्लत और रुसवाई वाले हालत से जो है ना वो निकल करके पीछे जा सके, वापस जा सके। तो आखिर तवारीफ, हाँ, यहाँ पे भी ऑनलाइन में बोल के तवारीर का लफ्ज इस्तेमाल किया था जी, इन्होंने जवाब भी लिख दिया था, बीवियां शोहर का मजाक उड़ाती हैं जी।
और हमारे
उम्मीद आपको डांटती है ना, तो जाहिर किसी वजह से आपने भी गलत किया होता है तो आपको डांट पड़ती है ना, तो यहाँ से अपने आप को देखना चाहिए। अच्छा, बड़े